ओम शांति। आप सभी भगवान के डायरेक्ट रचना हैं। भगवान के ज्ञान के द्वारा ब्रह्मामुख कमल से पैदा हुए ये ब्राह्मण जीवन है। इतना दिव्य और अलौकिक जीवन देवताओं का भी नहीं होता है। तो जिसका जीवन इतना श्रेष्ठ है, उसका जीवन तो सदा ही उमंग उत्साह से भरा रहता है। और जिसका जीवन उमंग उत्साह से भरा है, उसकी निशानी है, उसके लिए कोई भी बात, चाहे पुरुषार्थ की हो, चाहे सेवा की हो, कोई भी मुश्किल नहीं है। उमंग उत्साह वाली आत्मा सदा खुशी में नाचती रहती है। तो ब्राह्मण जीवन स्वयं ही उमंग उत्साह वाला जीवन है। लेकिन अगर सदा ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह नहीं रहता, तो उसका कारण पांच बातें हैं जो हम प्रैक्टिकल में ले आए तो सदा उमंग उत्साह में रह सकते हैं। वो पांच बातें हैं। पहली बात है फुल कास्ट ब्राह्मण बनना। हाफ कास्ट नहीं, फुल कास्ट ब्राह्मण बनना। हम आप सब बीके हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन फुल कास्ट ब्राह्मण हैं। अभी इसको क्लियर करेंगे। दूसरी बात है, अगर आप श्रीमत पर मन, बुद्धि और संस्कार सहित चलते रहें तो सदा उमंग में रहेंगे। क्यों? उसका जवाब देंगे। तीसरी बात है कि आप आत्मा जितना अपने को अनादि रूप में परम धाम में बाबा के पास अनुभव करेंगे, उतना आप में शक्ति और गुण सब बाप के आते जाएंगे। और आदि रूप में अनुभव करने से दैवी गुण स्वयं आते जाएंगे। तो अनादि और आदि रूप का अनुभव करना। चौथी बात है कि जितना ब्राह्मण जीवन में ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का पालन करेंगे उतना उमंग उत्साह में रहेंगे। पांचवी बात है कि आप एक आस, एक बल, एक के ही बल के भरोसे पर रहेंगे तो उमंग उत्साह में सदा रहेंगे। और लास्ट है, ट्रामा पर अगर अडिग रहेंगे तो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। पहली बात है फुल कास्ट ब्राह्मण, आप जब ज्ञान में आए, मीठे बाबा का परिचय मिला, उस समय देखो आपके जीवन में कितना खुशी और कितना उमंग रहता था। क्यों? क्योंकि उस समय हम फुल कास्ट ब्राह्मण थे, अर्थात कोष में जैसे जैसे बहनों ने बताया 100% फॉलो करते थे, इस कारण से उमंग उत्साह में रहते थे। माया क्या है, विघ्न क्या है, परिस्थिति क्या है, दुनिया का लोकलाज क्या है, सबसे मुक्त थे। हम आप ब्राह्मण बने हैं, शरीर पुराना है, इसी पुराने शरीर में नया जीवन ब्राह्मण है। शूद्र से मर के ब्राह्मण बने। देखो जब कोई मर के दूसरी जगह जन्म लेता है तो तीन बातें होती हैं। वो देखो तीनों मेरे जीवन में है। पहली बात है जब कोई मर के नया जन्म लेता है तो संबंधी बदल जाते हैं, माँ बाप भाई बहन मतलब संबंधी बदल जाते हैं। दूसरी बात है स्थान बदल जाता है, जहां से मर के जहां जन्म लिया वो स्थान हो जाता है। और तीसरा है धर्म बदल जाता है, जहां जन्म लिया उस धर्म के हो गए। अब देखो तीनों बातें हमारे जीवन में हैं। पहली बात संबंधी बदल जाते हैं। आप हम सबका सर्व संबंधी कौन है? कौन है? मीठा बाप दादा सर्व संबंधी है। लेकिन प्रैक्टिकल में देखो तो 5% भी नहीं है। कहने में कहते सर्व संबंधी है लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है। आप अपने घर में देखो, लौकिक घर में जो आपके संबंधी हैं, चाहे बेटी है, बेटा है, कोई भी है, आप जब भी उसको देखते हैं, मान लो बेटी है, तो आप देख ते ही उसे क्या देखते, मेरी बेटी है ना, यही स्मृति आती है ना। मेरी बेटी है या बेटा या माँ या बाप है, अगर आपको ये स्मृति आती है देख करके, तो क्या उस समय आप भीगे हैं? क्या ब्राह्मणों को बेटी होती है, बेटा होता है? सोचो आप, हम सारा दिन किस स्मृति में हैं? लगभग लगभग पुराने शरीर की स्मृति में ही है। तो जब मरे ही नहीं तो जन्म लेने का प्रश्न ही नहीं है, और जन्म नहीं मिला तो पुरानी दुनिया तो दुख दर्द वाली दुनिया है, वही अनुभव होगा। उमंग उत्साह सदा नहीं रहेगा। तो ये पक्का करो, लौकिक परिवार में कहीं भी आप नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ये बहुत अंदर से पक्का करो कि ये भी आत्मा है, ये भी शिव बाबा की संतान है, मेरा भाई है, या ये भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा बाबा को जानती नहीं लेकिन है, ये भान पक्का करो, अंदर से ये भान पक्का करो। जब ये भान पक्का करोगे तब आप ब्राह्मण बनोगे, और फिर ब्राह्मण बनने के बाद आपका पुरुषार्थ आगे चलेगा, फरिश्ता देवता आदि। अगर शुद्ध जीवन में ही आप पुरुषार्थ करने की कोशिश करोगे तो एक घंटा योग में बैठोगे, मुश्किल से 4-5 मिनट योग लग जाए तो बड़ी बात है, कारण युद्ध बहुत करना पड़ेगा। सारा समय शूद्र जीवन में बिताया है, तो पहली बात तो आप संबंधी आपका चेंज हो गया, आपका सर्व संबंधी ईठा बाप दादा है। अपनी बेटी को देखो, ऊपर से बेटी बोलो जरूर, लेकिन अंदर से आए ये भी ब्रह्मा कुमारी है, या ये भी आत्मा है। ये पाठ आपको नष्टो मोह बनाती जाएगी, ये पाठ भगवान की याद दिलाएगी, ये पाठ आपको ईश्वरीय जन्म का नशा चढ़ाएगा। अगर ये पहला पाठ ही नहीं पक्का किया है तो आगे कैसे बढ़ेंगे? दूसरी बात, जब मर के जन्म लेते हैं स्थान बदल जाता है। आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का परमानेंट एड्रेस कौन सा है? मधुबन, सूक्ष्म वतन या मूल वतन? यही है ना। अब देखो सारा दिन हमें क्या याद रहता है, हम इंदौर के हैं, यहां के हैं, वहां की हैं, क्या याद रहता है? सोचो आप, सारा दिन जो लौकिक में जहां रहते हैं वही याद रहता है, तो क्या आप मरे हैं और तीसरी बात, धर्म बदल जाता है। उस दुनिया में हिंदू मुसलमान सिख जो भी धर्म हो, लेकिन आपका भी धर्म बदल गया। धर्म अर्थात धारणा, जो ईश्वरीय नियम है वो आपका धर्म है। आपका धर्म कर्म अलग हो गया। अभी भी कितने ऐसे हैं जो पुराने लौकिक धर्म कर्म में अभी तक अपने को चला रहे हैं। अगर पुराने धर्म कर्म में चला रहे हो, एक है मजबूरी, उस तो निमित्त मात्र पार्ट बजाना है भाई, हमारे घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता है, किसी ने शरीर छोड़ा है, अब वो दुनिया के हिसाब से करना चाहते हैं, आपको निमित्त मात्र पार्ट बजाना है। एक होता है नहीं, उसमें पूरा लग जाना माना अभी हमें पुरानी दुनिया में ही है। नहीं तो ब्राह्मणों का धर्म क्या है? कोई शरीर छोड़ता है तो क्या करते हैं? यहां सीधी सी बात है, शरीर छोड़ा, उसको गया अपना जला करके आए, बाबा को भोग लगाया, ब्राह्मणों को खिलाया, पूरा हुआ। लेकिन हम करते रहते हैं, ये अभी अपना इंटरेस्ट है या मजबूरी है? मजबूरी के लिए तो बाबा कहता है आपको निभाना है, लेकिन क्या अपना भी दिल है? अगर आपका दिल ना होगा तो आपको कोई कुछ कहेगा नहीं। लेकिन होता क्या है, आधा दिल बाबा के ज्ञान की तरफ होता है, आधा उधर होता है, फिर दोनों तरफ से फंसते हैं। अगर पूरा झाटकू बन जाओ तो दुनिया वाले बलिहार जाएंगे। एग्जाम्पल, किसी के घर में कोई शरीर छोड़ा, अब दुनिया में रीत रसम है रोने का। अगर आप बाबा की याद में स्थित रह जाओ, देखो कितनी बड़ी सेवा होगी। लेकिन नहीं, हम भी लौकिक बहावा में बह जाते। तो पहली बात है, आप जीते जी मरो, फुल कास्ट ब्राह्मण बनो, फिर फरिश्ता बनने का सोचो। शूद्र से फरिश्ता नहीं है, ब्राह्मण से फरिश्ता है, फरिश्ता से देवता है। तो पहली बात तो ये पक्का करो, बाबा के घर में आए हो कि हम पक्के पक्के ब्राह्मण बनेंगे। ये ये अंदर से पक्का करो, दुनिया है जब तक चले चलती रहे, लेकिन मेरा संसार बाबा है, मेरा संसार बाप दादा है। आप बाप दादा में खोए रहो, दुनिया तो जब तक चलती है चलती रहे, रिजल्ट आप खुशी में नाचते रहेंगे। और यही खुशी का चेहरा सेवा करेगा। तो ज्ञान सुनाने से नहीं मान रहे हैं, वो आपके चेहरे को देखकर मानेंगे, प्रैक्टिकल स्वरूप देखकर मानेंगे। दूसरी बात है श्रीमत पर चलना। श्रीमत हमें सोकर उठने से लेकर सोने तक मिली हुई है। हर एक ब्राह्मण बच्चा श्रीमत पर चल रहा है यथाशक्ति, लेकिन श्रीमत पर चलना किसे कहा जाता है? श्रीमत पर चलना अर्थात बाबा के महावाक्य की मुरली से सुने और उसी समय से करने लग जाना। श्रीमत का ये मतलब नहीं है मुरली आज सुनी करेंगे तीन चार दिन के बाद, या आप जैसे मुरली सुनते हो, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मुरली सुनते हो बाबा मुरली में कभी कहता है कि बाबा परम धाम छोड़ करके अभी नीचे आ गया है, इस तन में बैठा है, बाबा को यहां याद करो, सामने बैठा है। और कभी कहता है कि बाबा भले यहां आया है लेकिन आपको परमधाम में ही याद करना है। कभी बाबा कहता है कि बाप और दादा दोनों को इकट्ठा याद करो, बिना ब्रह्मा बाबा के कुछ मिलेगा नहीं। कभी कहता इसको नहीं याद करो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो, इससे कुछ नहीं मिलेगा, है खाली दलाल के रूप में। तो जिस दिन बाबा जो पॉइंट कहे उसको उसी दिन उस रूप से प्रैक्टिकल ले लाना, अपने हिसाब से नहीं चलते रहना। योग करने बैठे मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूं, परम धाम की ये तो हो, लेकिन आज बाबा ने क्या कहा है, उसको कहा जाता है श्रीमत पर चलना। पहली बात। दूसरी बात, श्रीमत पर चलना अर्थात जो बाबा ने कहा तुरंत करने लग जाना। इससे फायदा क्या होगा? जो श्रीमत पर चलता है उसको भगवान का आशीर्वाद मिलता है। लौकिक दुनिया में भी देखो, जो आज्ञाकारी होता है घर में, उसको आशीर्वाद मिलता है या नहीं मिलता है? तो सब परिवार वालों को अनुभव होगा। या मान लो आप बीमार हो और किसी को कहो भैया एक दवाई ला करके दे दो और वो उसी समय जाए दौड़ करके ला करके आपको दवाई दे दे, तो आपके दिल से दुआ निकलेगी या नहीं निकलेगी? निकलेगी ना। और आपने कहा दवाई लाकर दे दो, वो उस समय दवाई लाकर नहीं दिया, अगले दिन 5-6 टैबलेट लाकर के दे दिया, दुआ निकलेगी? बिल्कुल नहीं। कई ऐसे हैं जो बाबा का कहना नहीं मानते, जैसा बाबा रोज मुरली में कहता है, फिर बैठ के 2-4 घंटा तपस्या करेंगे। अगर सच रिजल्ट पूछो तो योग बिल्कुल नहीं लगता है। कारण, इतने समय की अवज्ञाओं का बोझ बहुत चढ़ा हुआ है, इतनी आत्मा भारी हो गई है, सब बोझ को खत्म करके हल्का होकर उड़े ऊपर बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बोझ बार बार याद आ जाता है, बार बार याद आ जाता है। आज्ञा की पालना का फल जो बाप का आशीर्वाद मिलता है, इस आशीर्वाद का आपको प्रैक्टिकल फायदा क्या है, श्रीमत पर चलने से फायदा क्या होता है? एक तो श्रीमत पर चले तो उस कर्म का जिम्मेदार बाबा हो गया, आप हल्के हो जाएंगे। और दूसरी बात, बाप का आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद मिलने से क्या होता है, एक उदाहरण आपको देते थे। अपनी मम्मा थी, मम्मा इतने थोड़े समय में, या दादियां हैं जो भी हैं, या मम्मा थोड़े समय में कर्मातीत कैसे बन गई? क्या मम्मा के सामने पेपर नहीं था? क्या मम्मा के सामने पुराने संस्कार नहीं थे? क्या मम्मा के सामने शारीरिक कर्म भोग नहीं था? क्या नहीं था मम्मा के सामने? सब कुछ था। शारीरिक कर्म भोग भी फुल फोर्स का था, कैंसर था, पुराने संस्कार ज्ञान में आते, कोई जादू नहीं है जो अपने आप उड़ जाते हैं, पुराने संस्कार थे। बाबा ने मुरली में कहा था, मम्मा ने इस जन्म में तो मांस नहीं खाया, लेकिन पिछले जन्म में खाती थी। मम्मा कितनी फैशनेबल थी, वो सब कहानी आप लोग जानते हो। पुराने संस्कार सब थे, लेकिन कैसे आगे चली गई, इसका एक ही आधार था कि हम आप सब जैसे पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं, हमारे सामने पुराने संस्कार विघ्न के रूप में आ जाते। मम्मा के सामने भी आते थे, लेकिन बाप का आशीर्वाद उस विघ्न को दबा देता था, विघ्न हावी नहीं हो पाता था। इसलिए मम्मा निर्विघन हो करके पुरुषार्थ को आगे बढ़ाती गई। हम सब विघ्नों में आ जाते हैं, पुरुषार्थ नहीं बढ़ता है, लेकिन मम्मा को बाबा का आशीर्वाद वहां काम करता है, विघ्नों को दबा देता है। भगवान का आशीर्वाद है, कोई साधारण बात नहीं है। मम्मा को कर्म भोग था, लेकिन दर्द इतना भी नहीं था। दादियों का भी सुनते होंगे, गुलजार दादी का, प्रकाशमयी दादी का, डॉक्टर पूछते थे दादी कहां दर्द है, कहीं नहीं। ये बाप का आशीर्वाद है, कर्म भोग चल रहा है, खाता खत्म हो रहा है, लेकिन दर्द है ही नहीं। ये आशीर्वाद सामाजिक पेपर मामा के सामने कितने थे आप सब ने सुना होगा कि कितना बड़ा हापुड़ में पेपर था। जज के सामने कैसे मम्मा विजयी बन गई, जबकि सब विरोधी थे। ये बाप का आशीर्वाद। अगर आगे बढ़ना चाहते हो, सदा उमंग उत्साह में रहना चाहते हो, तो हर श्रीमत का पालन करो। जैसे बाबा जो मुरली में कहता है उस दिन वैसा ही करने लग जाओ। एक ये है बाबा श्रीमत चार प्रकार से देता है, ये भी ख्याल रखना। एक है मुरली, दूसरा है जब आप योग में बैठते हैं और बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है तो आप बाबा से जो पूछते हैं, चाहे सो पुरुषार्थ अर्थ, चाहे सेवा अर्थ या किसी समस्या अर्थ, तो जो बाबा की टचिंग मिलती है वो भी है श्रीमत। आपको बाबा की टचिंग मिली है, बाबा की ही टचिंग है, इसका हमें कैसे पता पड़े? उसकी टचिंग अगर बाबा की टचिंग है तो तीन प्रकार का फायदा होगा। अगर टचिंग है बाबा की, पहली बात, अगर बाबा की टचिंग है तो आपको अंदर से बार बार आएगा कि ये पॉइंट, ये शब्द तो मेरी मन बुद्धि में भी नहीं था, बाबा की टचिंग। जो आपके मन बुद्धि संकल्प में था ही नहीं वो बाबा ने टच किया। दूसरी बात, बाबा की टचिंग है तो जिसको भी आप वो बात बताओगे सब एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये बात राइट है। तीसरी बात, अगर बाबा की टचिंग है तो आपको उसमें 100% सफलता मिलेगी। तीसरी श्रीमत है निमित्त आत्माओं के द्वारा डायरेक्शन। जैसे मधुबन से डायरेक्शन जाता है, उस डायरेक्शन को फॉलो करना बाबा की श्रीमत। चौथा है कि कई बार बाबा इंडिविजुअल श्रीमत देता है, कई बार जनरल श्रीमत देता है। इंडिविजुअल श्रीमत उसी के लिए होती है। जैसे बाबा कहता है मिलिट्री वालों को, अगर कुछ ऐसा कारण है तो आप बाबा को याद करके दृष्टि देकर आप खा सकते हो। जब दृष्टि से सृष्टि को पावन बना सकते हो तो क्या खाने को पावन नहीं बना सकते? लेकिन वो सिर्फ उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। लेकिन कई ब्राह्मण इस चीज को प्रैक्टिकल में अपने लिए ले लेते, प्रैक्टिकल में नहीं है लेकिन हाँ अपने लिए ले लेते। बाहर का लिमका कोका कोला भी पीते हैं, कुछ बिस्किट भी खाते, पता नहीं क्या क्या खाते पीते, कहते हैंड टच नहीं है। हैंड टच नहीं, मशीन को किसने चलाया? वहां खड़ा हुआ मशीन को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या वो वाइब्रेशंस नहीं जा रहे हैं उसमें? क्या या एक और बताते हैं बात, ये जो योग नहीं लगता है इसका मेन कारण यही, अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। जब आप शुरू में ज्ञान में आए तो आपका योग लगता था या नहीं लगता था? बाबा के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। क्यों? तब सब कुछ फॉलो कर रहे थे। और जैसे जैसे थोड़ा पुराने होते जाते हैं नियमों को ढीला करते जाते हैं, या दूसरे को देख करके फॉलो करते हैं। दूसरा क्यों खा रहा है, एक उदाहरण के रूप से बताता हूं। अपनी प्रकाशमणि दादी को गैस ट्रबल बहुत रहता था, तो डॉक्टर ने दादी को कहा कुछ पता नहीं सोडा कोई होता है, ये थोड़ा सा पी लिया करो। अब वो दादी ने तो दवा के रीति से लिया, फिर लोग पीने लग शुरू कर दिया। आखिरकार बाबा को मुरली में कहना पड़ा कि ये तो डॉक्टर ने दादी को सिर्फ दवाई के लिए बोला है। तो अगर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो सदा उमंग उत्साह में नहीं रहेंगे। तीसरी बात है, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को अगर आप संकल्प बोल कर्म से अगर तोड़ा, उसी समय बाबा से कनेक्शन आपका कट ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक, शक्ति मिलना बंद हो जाएगी, रूढ़िहान होना बंद हो जाएगा, फिर आप तुरंत उदास हो जाएंगे। अगर किसी भी नियम का तोड़ा तो इसलिए जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं हैं इन पर अगर अपने को चलाते रहो तो आप उड़ते रहेंगे। कई अपनी मर्जी से नियमों को क्रिएट करते हैं। जैसे अभी 2 साल पहले कोरोना फैला हुआ था, उस समय का नियम निकल गया था भाई सेंटर पर आप उससे मोबाइल से किसी से मुरली सुनो आदि आदि। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो क्लास में ना आकर के मोबाइल से मुरली सुनते, अब बताओ ये आपको किसने श्रीमत दी है कि तुम घर बैठे मोबाइल से मुरली सुनो? क्या मोबाइल पर मुरली सुनने से क्या आपको सेंटर का वाइब्रेशंस मोबाइल में मिलेगा? बाबा के घर का वाइब्रेशंस मोबाइल में मिलेगा? ये जो मोबाइल है इसमें इतनी गंदगी भरी हुई है, इसका एक आपको हम अपना अनुभव बताते हैं। हम बीमार थे 2 साल पहले, तो गए थे हैदराबाद विजयवाड़ा में नेचर चोर कराने। वहां से जब गए तो एक सेंटर पर गए, तो वहां उन्होंने सुना एक बहुत बड़ा योगी आया है, तो बाहर के लोग थे तो वो पहुंच गए ओरा चेक करने के लिए, इनका कितना ओरा योगी का योग। तो क्लास पूरा हुआ फिर वो हमारा ओरा चेक करने लगे, तो पहले तो जैसे मोबाइल वोबाइल सब जेब में रखते थे, मैंने भी रखा हुआ था, तो उसने जो देखा चेक किया तो सिर्फ 3 मीटर गया ओरा, सिर्फ 3 मीटर। और उसके बाद उसने कहा अच्छा अभी आप मोबाइल हटा दो। मोबाइल हटा दिया, फिर ओरा चेक किया तो 12 मीटर गया। इतनी गंदगी इस मोबाइल में है। और लोग कहते मुरली से हम वाइब्रेशन से क्या मिलेगा आपको मुरली का? बिल्कुल नहीं। ये अपने मन से नियम बना रहे, मुरली सुनी, हां दीदी मुरली सुन ली है, तो एक पॉइंट भी बता देंगे। बाबा याद प्यार देता है, याद प्यार क्या मोबाइल में मिलेगा? आपको किसी का प्यार प्राप्त करना है, प्यार दुलार स्नेह, तो उसके पास जाओगे तब तो प्यार करेगा। कैसे प्यार करेगा? आप सेंटर पर आए नहीं तो बाबा का याद प्यार क्या आपको मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। अगर याद प्यार बाबा का नहीं मिला तो आपके जीवन में मिठास आ ही नहीं सकती। एक तो बाबा जैसे मीठा है, मीठा 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 कह करके हम सबको मीठा बना देता है। बोल मीठे, वायुमंडल वाइब्रेशंस मीठा, आत्माएं चेंज होती जाती है। घर में आप मोबाइल से मुरली सुन रहे हैं, उस तरह लड़ाई हो रही, घर में लड़ रहे हैं, कौन सा वाइब्रेशंस मिल रहा है आपको? या कहीं वॉकिंग करने जाते हैं तो मुरली सुन लेते, वॉकिंग करते समय कैसे मुरली सुन लोगे? कान में आवाज जाएगी, आपका तो ध्यान वॉकिंग पर है ना, चलने पर ना। अगर सुनने में गए तब तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कई अपने मन से श्रीमत क्रिएट कर लेते हैं, ये करना है। बाबा को कहते याद करना, हाँ हाँ बाबा को तो कहीं भी बैठ करके याद कर लो, अपना ही बाबा है। अगर अपना ही बाबा हो तो राइट है, लेकिन ये सेंटर फिर किसका है? वो बाबा का नहीं है, सेंटर किसके लिए बनाया है? अगर बाबा का सेंटर है तो उस स्थान का महत्व कितना है? देखो, आप तीर्थों पर जाओ, मूर्ति की वैल्यू नहीं होती, उस स्थान की वैल्यू होती। मूर्ति तो वो आपको कहीं भी मिल जाएगी। श्री कृष्ण की मूर्ति कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन वैल्यू मथुरा की। सेंटर की वैल्यू अपनी है, मधुबन की वैल्यू अपनी। आप लोग मधुबन में क्यों आते हो? यहां का वाइब्रेशन ही तो खींचता है। और तीर्थ स्थान की मान्यता है लौकिक दुनिया में भी कि तीर्थ स्थान पर जाओ तो कुछ ना कुछ पाप खत्म हो जाते, इनकी मान्यता है। और सेंटर पर जाओ तो गारंटी है जाने से कुछ परसेंट पाप खत्म हो जाते हैं अपने आप। और मधुबन में आओ तो महायज्ञ है, यहां तो बहुत ज्यादा खत्म हो जाता। इसलिए मोबाइल में कुछ मिलने वाला नहीं है, अपने मन से मन मत नहीं चलाओ, श्रीमत प्रमाण अपने को चलाओ, जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं बनी हुई हैं उन पर चलाओ, फिर देखो आपका जीवन कितना उमंग में आता है। ब्राह्मण बनकर के भगवान सब कुछ मिलकर के भी और चेहरा उदास लटका हुआ है। सबसे बड़ी प्राप्ति तो यही है, देवताओं का चेहरा खिला रहता है और मीठा होते हैं, दो ही विशेषता है, सर्व प्राप्ति है। सर्व प्राप्ति तो ब्राह्मणों के खजाने में भी है। अगर फुल कास्ट ब्राह्मण बन जाओ तो एक गारंटी है कि आपको जिस चीज की आवश्यकता है, लालच नहीं, आवश्यकता है, वो भगवान देगा, बांधायमान है। चाहे स्थूल धन चाहिए वो भी देगा। कहां से देगा, कैसे देगा, किस तरह से देगा वो भगवान जाने, लेकिन देगा। लेकिन फुल कास्ट ब्राह्मण बनो तो एक एग्जाम्पल देता हूं आपको कि भगवान देता कैसे। बहुत समय पहले की बात है, जब अब बाबा ने शरीर छोड़ा था, उसके कुछ दिन के बाद गुजरात में एक रहती थी छुकी दादी, तो उनको थोड़ा सेंटर नया नड़ियाद में नया सेंटर खुला था, तो उनके मन में संकल्प आया कि मेला करें तो स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने दादी को कहा, दादी मेरा विचार है मेला करने का। तो दादी ने पूछा, कितना है मेला करोगे, कितना आपके पास? बोला 10,000। तो बोला 10,000 में तो मेला कैसे होगा, अभी 1-2 साल और रुक जाओ, थोड़ा और इकट्ठा हो जाए, फिर मेला कर लेना। उसे तो जी दादी कह के चली गई। लेकिन रोज सुबह योग में बाबा से लड़ती थी, बाबा मुझे मेला करना है, बाबा मुझे मेला करना है। आप कहते हो मैं बच्चों का हर कहना मानता हूं, जो बच्चे कहते हैं मैं करता हूं, तो बाबा मुझे मेला करना है, मुझे 40,000 रुपए चाहिए, मुझे 40,000 रुपए चाहिए। उस समय 40,000 में मेला हो सकता था। अब रोज योग में सुबह बाबा से कहती थी। हुआ क्या, एक दिन वो सुबह करीब 9-10 बजे का टाइम था, हाल में बैठी हुई थी, जैसे कुछ बाबा के चित्र लगे हुए थे, एक भाई आया देखने के लिए। तो उसने आते ही गेट पर जैसे पहुंचा, चूंकि दादी ने कहा आओ भाई आओ देखो इसे, तो आगे तो नहीं बढ़ा, लेकिन वहां पहुंचते उसने प्रश्न किया, क्या आपका नाम लक्ष्मी है क्या? रियल में उनका नाम तो लक्ष्मी ही था, लेकिन सुना अनसुना कर दिया। बोला आप आओ चित्र देखो। फिर तब तक दूसरा प्रश्न किया कि आपका इतने समय पहले शादी हुई थी क्या? तो पूछ रहा है सत्य है। अब वो बार बार कहती भैया आप ये चीज आके देखो, इन सब बातों से क्या मतलब है आपको? तो बोला अच्छा दहेज में आपको कितना मिला था? तो सिंधियों में ये सिस्टम था, पहले दहेज जो देते थे वो किसी को बताते नहीं थे, बंद करके बॉक्स में दे देते थे। तो उनको उस समय, चूंकि दादी ने कहा मुझे पता नहीं है, तो उसने कहा आपको दहेज में 40,000 रुपए मिले थे, और जो उनका पति था और वो भाई दोनों दोस्त थे जो बात कर रहा था, उसको बिजनेस में बहुत घाटा लग गया था, इन्होंने 40,000 रुपया उनको दे दिया था। ये इनको पता नहीं, चौकीदारी को पता नहीं था, 40,000 रुपया सीधा उनको दे दिया था। तो बोला वो 40,000 रुपया जो है वो मुझे दिया था, मैं देने आया हूं। तो छुग्गी दादी ने कहा मैं ऐसे तो लूंगी नहीं, आप आओ पहले देखो चित्र समझो, क्योंकि बाबा कहता बिना सेवा किए लेना मना है। अब वो आया उसको चित्र दिखाने लगे, और जैसे ब्रह्मा बाबा के चित्र पर आया वो इतनी दूर जाकर के खड़ा हुआ। बोला ये बुढ़ा कौन है? बोला वही तो बता रही हूं, इसी के तन में परमात्मा आकर के सब अपना काम कर रहा है। बोला इस बुढ़े ने मेरी नींद हराम कर रखी है, रोज 4 बजे कहता जाओ पैसा दे के आओ पैसा दे के आओ, बच्ची को मेला करना है बच्ची को मेला करना है। तो वो 40,000 रुपया देने आए। तो देखो अगर आप सच्चे बच्चे हैं तो चाहे सेवा अर्थ चाहे लौकिक अपने कार्य, बाप है लौकिक दुनिया में भी बाप बच्चे की तकलीफ नहीं देख सकता, वो कैसे देख सकता है? सिर्फ हम सच्चे बच्चे बन जाएं बस। इसलिए आप अपना नियम नहीं निकाल के जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं हैं उन पर चलते रहो, बाबा सब कुछ पूरा कर देगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अगर अभी कोई गरीब है, अभी ब्राह्मण बनने में भी अभी भी, इसका एक ही कारण है कि संगम युग पर जितना यज्ञ में करना चाहिए कर सकता था उतना किया नहीं है। अगर संगम युग पर जितना कर सकता सकते हो उतना अगर यज्ञ में करो तो भगवान बाधाए मान है पूरे कल्प के लिए आपको फुल रखने का। इसलिए अभी तो मीठा बाबा मिल गया है, अभी उसके श्रीमत पर चलो और खुशी में नाचते गाते रहो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामलोचन भाई जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर ब्राह्मणों के जीवन में उमंग उत्साह और भरपूरता कैसे आए सारे कल्प के लिए, बहुत सुंदर अनुभवों के साथ, बहुत सुंदर विचारों के साथ, बहुत सुंदर टिप्स के साथ कि कैसे हम ब्राह्मण जीवन में आज्ञाकारी बने, नियम मर्यादा अनुसार चले और फुल कास्ट ब्राह्मण बने। इतनी सुंदर क्लास कराई, पुनः मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं। अभी 7 से 8 योग चलेगा, सभी योग में बैठेंगे।
चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया।
चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया।
खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, खुशी जैसी कोई दवाई नहीं, ये अमृत है सबको पी। मिलाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो सदा खुश रहो भूखे है सच्ची खुशी ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी ये मुस्कान वरदान भगवान का मुस्कान वरदान भगवान का ना जो खुशी में नचाते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो खजाना खुशी का लुटाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो सदा खुश रहो।